80 के दशक में जब हमारे पिताजी ने काम करना शुरू किया था तो उनकी मासिक तनख्वाह थी 850 रुपये। 850 रुपये 80 के दशक में बहुत बड़ा मंथली अमाउंट हुआ करता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। वहीं 80 के दशक में अगर आप ऑटो या टैक्सी से सफ़र किया करते थे तो भाई साहब 10 रुपये में आप कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर चल लेते थे। राउंड बैक टू 2021, अगर आज के ज़माने में आपको कोई 850 रुपये पर महीने तनख्वाह दे तो क्या आप लेंगे? जो चीज़ आज से 10 साल पहले 15 रुपये में मिल जाया करती थी, उसी चीज़ की वैल्यू आज शायद 30, 40 या 50 रुपये हो चुकी होगी। अगर हम एक क्रिकेट की बॉल लेने जाएंगे तो मुझे याद है जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे छोटे में, 90 के दशक की बात है, तो एक जो रबड़ की बॉल होती थी वो हमको मिला करती थी 10 रुपये में। आज उसी रबड़ के बॉल की कीमत कम से कम नहीं तो 45 रुपये है। तो ऐसा क्या हुआ है? महंगाई की इस दर को बुलाते हैं इन्फ्लेशन। कई लोग इसको मुद्रा स्फीति भी बुलाते हैं, आर्थिक भाषा में कहा जाता है। ये आपकी मुद्रा की स्फूर्ति तय करता है, आपकी मुद्रा यानी करेंसी ऊपर जा रही है या नीचे, उसके आधार पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन तय होता है। अब इन्फ्लेशन का लेना देना आपके निजी जीवन से कुछ है? बिल्कुल है। डीजल और पेट्रोल के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। अब उसमें आपको और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि खाड़ी में बैठे हुए कुछ देशों ने अपने डीजल और पेट्रोल का प्रोडक्शन जो है वो कम कर दिया है, और उसकी वजह से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से भारत में भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए मिश्रा, दुबे, निजामुद्दीन, शुक्ला सब ने भाई सोचा कि यार हमारा खाड़ी के देशों से क्या लेना देना। लेकिन ये उदाहरण बताता है कि भाई दुनिया भर में अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि दुनिया के किसी कोने में भी छोटा या बड़ा आर्थिक डेवलपमेंट सीधा असर डालता है आपकी जेब पर। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो रबड़ की बॉल 10 रुपये में मिलती थी उसकी कीमत आज 45 रुपये है, यानी महंगाई की दर 10 से 45 आने में कई साल लगे होंगे। हर साल कुछ परसेंटेज ये बढ़ता होगा, फिर अगले साल कुछ और परसेंटेज, और ऐसा करते करते 2021 में आज वो बॉल 50 रुपए की मिलती है। तो आइए सबसे ज़्यादा आसान भाषा में समझते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है और वो हमारी तनख्वाह या फिर आमदनी या फिर खर्चे पर किस तरह का प्रभाव डालती है। हमने बात करी श्रीनाथ श्रीधरन से, जो कि एक इंडिपेंडेंट मार्केट्स कमेंटेटर हैं, कई सारी कंपनियों के इंडिपेंडेंट बोर्ड में भी हैं और आर्थिक जगत के जानकार हैं।
जो चीज़ पिछले साल में 1 रुपये था और उसी चीज़ का अभी दाम क्या है 1 साल के बाद, और वो जो डिफरेंस है, अगर 1 रुपये का चीज़ अभी 1.20 रुपये में मिलता है, आपका 20 पैसे का डिफरेंस है 1 रुपये में, 20%, ये इन्फ्लेशन हुआ है। वही चीज़, सेम चीज़, अगर आप सॉल्ट ले लो, अगर गाड़ी ले लो, अगर आप वेजिटेबल लीजिए, अगर कुकिंग ऑयल लीजिए, जो चीज़ सेम चीज़ ईयर ऑन ईयर कितना प्राइस में डिफरेंस है, वो कैलकुलेशन परसेंटेज के हिसाब से इन्फ्लेशन बोलते हैं।
मतलब अगर दूध की थैली पिछले साल 20 रुपए में मिलती थी और इस साल वो 21 रुपए में मिलने लग गई है, तो मतलब 5% दाम बढ़ा, तो यानी कि दूध की थैली पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ 5%। सोचने वाली बात ये है कि क्या आपकी तनख्वाह पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़ी है? ऐसा होता नहीं है। क्यों शीनी जी?
जो हम लोग बोलते हैं हर साल अप्रैल या मई में बोलते हैं अप्रेजल टाइम होगा, प्रमोशन या इंक्रीमेंट जितना भी अनाउंसमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर में, वो इन्फ्लेशन, वो सोचते हैं थोड़ा तो इन्फ्लेशन के ऊपर देना चाहिए। अगर लास्ट ईयर 100 रुपया चीज था, आज इस साल सेम वही चीज 104 है, 4% का इन्फ्लेशन हुआ, तो लोग सोचेंगे यार कम से कम 4 रुपया था इंक्रीमेंट देना है सबके लिए। ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है, ऐसा लॉ भी नहीं है। अगर आपका खर्चा, फैमिली का खर्चा ज़्यादा है कंपेयर टू आपका सैलरी इनकम का इंक्रीमेंट, आप अच्छा। हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे ना यार मेरा जितना भी मैं कमाऊँ बहुत कम पड़ता है।
ओके
और ओके। इंडिया में पिछले एटलीस्ट 20 साल में आप लेट्स से आईटी या आईटीएस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री देखिए, उससे पहले तो बीपीओ सेक्टर सडनली बूम हुआ था। सो सडनली जो यंगस्टर्स थे, वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, उनको बीपीओ या केपीओ में नौकरी भी लग गई और 10 से 15 हज़ार रुपये कमाई हुई हर महीने का। सो वो लोग क्या किया, बाइक खरीदा, वॉच खरीदी, ट्रैवल, टूरिज्म, वेकेशन, मॉल, तो सब में खर्चा हुआ। वो लाइफस्टाइल का भी रिलेटेड है। अगर आप बोलेंगे मेरे पास इतना सब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, सिर्फ परिवार का खर्चा है, अगर आप मिडिल क्लास लेट्स से फैमिली ऑफ फोर देखिए और जहाँ पे दो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उस फैमिली का ज़्यादातर फोकस यही होगा एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए पैसा चाहिए। हर एक परिवार का फैमिली बजट होता है, हाउस होल्ड बजट। अब बोलते हैं यही करना है मुझे, सो सैलरी तो इतना तेज नहीं बढ़ती है।
तो सीधी सीधी बात यह है महोदय कि इन्फ्लेशन आपकी सैलरी ऊपर या नीचे नहीं करता है, लेकिन आपके खर्चे जरूर बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो अलग अलग देशों में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे घटते और बढ़ते हैं, इसके पीछे की क्या गणित हो सकती है, और क्या इसका कुछ लेना देना है देश की एनुअल सेविंग से? मतलब एक देश में एनुअल रेट ऑफ सेविंग्स कितना होता है, क्या इसका कोई असर होता है इन्फ्लेशन पे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे? मतलब अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में रखें तो क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है?
सो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का मैनेजर है या इन्फ्लेशन का बॉस जो कंट्रोल करते हैं पॉलिसी की तरफ और मार्केट एक्शन जो बोलते हैं, वो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक। सो उनका कैलकुलेशन यही है कि फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपने कहा US और इंडिया, अगर सेविंग्स इंटरेस्ट रेट आप कंपेयर करेंगे, US में अगर आप $100 बैंक में रखेंगे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 0.25% ईयर। मतलब ₹100 के लिए एक साल रखो बैंक में आपको 25 पैसे मिलेंगे। इंडिया में अभी चल रहे 3-4% सेविंग्स इंटरेस्ट रेट। अगर आप बैंक में सेविंग्स डिपॉजिट रखेंगे आपको हर ₹100 के लिए एक साल के बाद 3-4% मिलेगा। सो बहुत फर्क है उसमें परसेंटेजेस में। सो अलग अलग मार्केट में अलग अलग इन्फ्लेशन सेट करते हैं सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल US में टारगेट करते हैं इन्फ्लेशन 2%, क्योंकि उनका सेविंग्स इंटरेस्ट रेट ही उतना ही है, कम है।
तो सेविंग्स इंटरेस्ट से डायरेक्ट लेना देना है आपके इन्फ्लेशन।
तो देवियों और सज्जनों, आप अपनी पहली सैलरी का वेट कर रहे हैं, आपको अपने माँ बाप के लिए खर्चा करना है, अपने ऊपर खर्चा करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए खर्चा करना है, खर्चा कैसे करना है सबको पता है, लेकिन पैसे सेव करना एक आर्ट है, एक कला है जो हम सबको सीखनी चाहिए।
बट मेन चीज ये, आपको पर्सनल फाइनेंस में ये देखनी पड़ेगी कि अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है रिटर्न तो इन्फ्लेशन से ज्यादा तो वापस आना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 5% चल रहा है और आपका पूरा जितना भी आपने पैसा लगाया और उसमें सिर्फ 5% मिल रहा है आपको, टैक्स छोड़ के, इनकम टैक्स छोड़ के, आपका तो जीरो वैल्यू हो गया ना, ग्रोथ ही नहीं है उस पैसे में। अगर 5% इन्फ्लेशन चल रही है और आपने इन्वेस्ट किया, आपको 8% मिल रही है टैक्स पे करने के बाद, आपको तो मिनिमम 3% नेट बेनिफिट है उसमें।
रेट ऑफ इन्फ्लेशन हर साल बढ़ेगा, लेकिन आपकी तनख्वाह, आपका इंक्रीमेंट हर साल उस रेट से नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट है, इकोनॉमी है, डीजल है, पेट्रोल है, डॉलर का मार्केट रेट है, डॉलर वर्सेस रुपया, रुपया वर्सेस पाउंड वगैरह वगैरह, 10 तरह की चीज़ें हैं, 10 तरह के ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, 10 तरह के आर्थिक डेवलपमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं छुप के आपकी सैलरी और आपकी आमदनी पे इफेक्ट डाल रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो आपको परेशान ना करें आगे चल के, इसलिए सेविंग्स करते चलें ताकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन के घटने या बढ़ने से आपको कुशन मिला रहे, आप बचे रहें।
जब फर्स्ट जॉब मिलती है ये तो खुशी की बात है, आप सोचेंगे यार अभी मेरा दुनिया मेरे मुट्ठी में है, और आप सोच रहे हैं मैं, मेरा इनकम बढ़ती रहेगी। फर्स्ट थिंग आपको ये नजर रखना पड़ेगा, इंडिया में अभी एज के हिसाब से लॉन्जिटिविटी बोलते हैं, ह्यूमन लॉन्जिटिविटी इज अबाउट 72 years प्लस। अगर आपका उम्र लेट से 22 है और 50 साल आप जिएंगे मिनिमम एवरेज इंडियन, और आप जितना भी अभी कमाई करेंगे, जितना आप सेव कर सकते हो, जितना आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो सकता है उसके हिसाब से आप 50 साल तक आपको जीने के लिए वो पेमेंट के लिए तैयार है, वो सर्विस के लिए। सो आप सेविंग्स ध्यान में रखो। इंडिया में पिछले 10 साल में हमारा कंट्री का, देश का सेविंग्स रेट कम होती जा रही है। हम लोग सोच रहे हैं कल आज के लिए जियो, कल देखेंगे, वो गलत बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, वेरी सिंपल, इंडिया में 70 करोड़ हम लोग यंगस्टर्स है और कंपटीशन बढ़ती रहेगी. सो अगर आप आज ये जॉब मिल रही है लेट्स से 10,000 रुपए पर महीने, ऐसा नहीं कि आपको हर साल 10% इंक्रीमेंट मिलेगी. ऐसा कुछ सीजन होंगे सो आपको इंक्रीमेंट अच्छी खासी मिलेगी, कुछ सीजन में आपको नहीं मिलेगी. सो प्लान फॉर हम लोग बोलते हैं रेनी डे. इंश्योरेंस लीजिए पहला, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप कवर कर लो, लाइफ इंश्योरेंस जो बोलते हैं टर्म कवर लाइफ.
तो महानुभाव, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग स्कीम अब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं रहे हैं, अब ये आर्थिक जगत की वास्तविकता है, अब ये आपकी जिंदगी की सच्चाई है. इन्फ्लेशन के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आप इन तीनों टूल्स का सहारा लें. देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो आगे आने वाले ज़िंदगी में आपके सारे डिसीजंस को डिफ़ाइन करेगा जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो. अगर कल को आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आप अपनी फैमिली को एक्सपेंड करते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, कहीं बाहर टूर पे जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, जिस जिस चीज़ में आपका फाइनेंस इन्वॉल्व होगा वहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा. आगे आने वाली ज़िंदगी में आप कई सारे आर्थिक फैसले लेंगे. ये फैसले जानकार और सही तभी हो पाएंगे जब आप इन्फ्लेशन को अच्छे से समझेंगे, इन्फ्लेशन को अच्छे से जानेंगे.